देखते हैं अब इनकी तफसीर।
लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना, जिन्होंने अहसन किया, एहसान के लेवल पे किया, उनके लिए हुस्ना है। हुस्ना जन्नत को कहते हैं, जन्नत है उनके लिए, तो अच्छाई है, भलाई है। वह ज़ियादा, और ज़्यादा है, यानी जो लोग एहसान के लेवल पर नेकी करते हैं। और एहसान के लेवल पे जैसे हमें वो हदीस जिब्राइल से भी पता चलता है एहसान क्या है, कि ऐसे आप नेकी करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे करो कि अल्लाह आपको देख रहा है। और जो मुहसिन होता है ना, जो एहसान करने वाला होता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो एक नेकी पे मुतमईन होके नहीं बैठ जाता, मैंने कर तो लिया अब और क्या करूँ, नहीं, वो हमेशा नेकी के मौके ढूंढता रहता है, वो आगे बढ़ता है नेकी में। ये कर लिया अब इससे आगे, ये कर लिया अब उससे आगे, और क्या करूं और क्या करूं, अगली की तलाश में रहता है। वो कर ली तो उससे अगली की तलाश में रहता है। तो ये नहीं वो सारी जिंदगी सोचता कि बस मंजिल मिल गई मुझे, कुरान पढ़ना शुरू हो गई हूं, बस हो गया मेरा काम, और अब क्या और मैंने क्या करना है, बस काफी है। तो उसकी जो दौड़ है ना, वो कभी रुकती नहीं है नेकियों में, वो आगे से आगे ही बढ़ता जाता है। तो जो एहसान करने वाले हैं उनके लिए हुस्ना तो है, समझ आ गई जन्नत, लेकिन ज्यादा क्या है? ज्यादा तो उर्दू में भी बोलते हैं ना, ज्यादा। तो ज्यादा क्या चीज है? ज्यादा इसको हम देखते हैं हदीस से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर की है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक मुनादी, एक पुकारने वाला निदा देगा, तुम्हारे लिए अल्लाह के पास एक वादा है। अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, यानी इसका मतलब उनके चेहरे वहां पर रोशन होंगे, और क्या उसने हमें दोजख से निजात नहीं दे दी, और क्या उसने हमको जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। यानी वो कहेंगे क्या इनाफ नहीं है उसने हमें दे दिया, उसने तो हमें सब कुछ दे दिया है। तो वो कहेगा नहीं, अल्लाह के पास तुम्हारा एक वादा है जो उसने अभी तुम्हें देना है। क्यों नहीं, ये तो दे दिया है। वो यानी समझ रहे हैं कि हमें तो इनाफ मिल गया, अब और क्या रह गया, और तो कोई चीज है नहीं। तो तब वो अल्लाह ताला अपना दीदार उनको कराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हिजाब खोल दिया जाएगा, और अल्लाह की कसम अल्लाह ने अपनी तरफ देखने से ज्यादा उनके नजदीक कोई महबूब चीज उनको नहीं दी। यानी उनको उसके बाद जो लज्जत अल्लाह ताला का दीदार करके महसूस होगी, वो जन्नत की किसी नेमत में नहीं होगी। ये है ज़ियादा, कि अल्लाह अपना दीदार करवाए, ये जन्नत से भी बढ़ के है। जन्नत भी इसके सामने मामूली हो जाती है जिसको अल्लाह अपना दीदार करा दे। और दूसरा कौल ज़ियादा के बारे में ये है कि अल्लाह ताला उनको हुस्ना देगा उसके मुताबिक, यानी उन्होंने अच्छा किया तो उनको अच्छाई मिलेगी और ज्यादा भी मिलेगा। ज्यादा क्या है? यानी ज्यादा अजर, कि अल्लाह ताला एक नेकी का बदला एक से नहीं ज्यादा से देगा, एडिशनल, कि 10 गुना अजर उसको अता फरमाएगा, और चाहे तो उससे भी ज्यादा, 700 गुना का भी आता है, बेहिसाब का भी आता है, बेहिसाब अजर देगा। उसने तो एक नेकी की थी। वला यरहक वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लह, और उनके चेहरों पर ना तो स्याही छाएगी और ना कोई जिल्लत होगी। यानी जब अल्लाह ताला को देखेंगे तो तब तो उनके चेहरे रोशन हो भी जाएंगे, वैसे भी उनके चेहरों के ऊपर वो वाली स्याही और रुसवाई और वो वाली परेशानी की एक हालत जिसकी वजह से कालाहट आ जाती है वो नहीं होगी। अल्लाह ताला इससे भी उनको बचा लेंगे, यानी चेहरों तक पे भी नहीं होगी कोई ऐसे आसार हो। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि बाज फिरके, गुमराह कुन फिरके, मोतज़िला हैं, खवारिज हैं, मुर्जिया हैं, ये अल्लाह ताला को देखने की नफी करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता, जन्नत में जाके भी नहीं देख सकेगा। तो ऐसा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमा का ये अकीदा है कि अल्लाह को देखा जा सकेगा, और ये हदीस इसकी यानी गवाही में है, इसकी दलील है, जो सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई है, तिर्मिज़ी में भी है। उलाएका असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, वो जन्नत वाले होंगे, जन्नत वाले हैं ये लोग, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। वल्लदीना कसबुस सय्यिआत, और जिन्होंने कमाइयां की बुरी, बुरी कमाई की। अब हम सब कमाइयाँ कर रहे हैं, शुरू होता है ना दिन, सुबह होती है तो हमारी कमाई शुरू हो जाती है। कभी आपने रियलाइज किया कि आप रात को क्या कमाई लेकर बिस्तर पे जा रहे हैं? कभी सोचा इसको, मेरी आज की कमाई कितनी हुई? हाँ, पैसों की कमाई को तो सभी देखते हैं, वो तो मुझे पता है कि आप लोग सब हिसाब किताब भी रखते होंगे, लिखते होंगे, जो भी बिजनेस वाले लोग हैं, भाई आज कितना कमा लिया, जो मजदूर है वो भी अपनी दिहाड़ी का करता है तो देखता है कि कितना मेरी आज की कमाई हुई है, और फल फ्रूट बेचने वाला वो भी गिनता है। लेकिन एक कमाई है जो हम सब कर रहे हैं, चाहे हम घर पे रहते हैं चाहे हम बाहर जाते हैं, क्या कमाई है जो हमारी है, जो हमारे आमाल की कमाई है? आज कितनी नेकी कमा ली और कितनी बुराइयां कमाई? इस मजलिस में मैं गई थी, इस दावत में मैं गई थी, वहां से क्या कमा के लेकर आई हूं? खाना तो आप खाते ही हैं, कमाई भी कुछ करते हैं आप, ये भी आपको पता है ना। कभी बुराइयां कमा के वापस आते हैं, कभी भलाइयां लेकर वापस आ जाते हैं, वो भी आपकी कमाई है, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती। फिर हम हैं कि हम आज क्या पहन रहे हैं, ये भी हमारी कमाई है, क्या खा रहे हैं ये भी हमारी कमाई है, कैसा खाया, कैसा पहना, कैसी बात की, क्या क्या अमल किए, सब हमारी कमाइयां, किधर चल के गए ये भी मेरी कमाई है। बाजार में कैसे थे, दफ्तर में कैसे थे, घर में कैसे थे, नमाज के लिए खड़े हुए तो कितना कमाई की नमाज में से, या कुछ भी ना कमाया? नमाज में इंसान का हिस्सा उतना ही है जितना कि वो सोच समझ के नमाज पढ़ता है, तो उसमें कितनी कमाई की? ये कमाइयां सब तो, किसी ने तो हसना कमा ली, कोई सैया कमाता, जिसने सैयात कमाई जजा उस सैयात भी मिस लिया, तो उसकी बुराई का बदला उसी की माने दे। ये अल्लाह की रहमत है कि इसमें ज्यादा नहीं कहा, इसमें नहीं ज्यादा कहा कि एक बुराई और एक बुराई अगर तुमने की तो उस रब का तो एहसान तुम्हारे ऊपर इतने हैं, उस रब ने तो तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें तो एक लम्हे भी नहीं उसकी नाफरमानी करनी चाहिए थी, तुमने नाफरमानी की तो एक करोगे तो 10 लिखी जाएंगी। जैसे हम दुनिया में तो यही रवैये रखते ना, ईंट का जवाब पत्थर से, तूने मुझे एक बात की मैं 10 सुनाऊंगी, एक बात कह के भी तुम जाओगे कैसे, मैं तुम्हें 10 सुनाऊंगी। कोई एक मारता है तो उसको 2 मार के भेजते हैं कि तुमने जुर्रत कैसे की। लेकिन अल्लाह के हाँ इतनी उसकी रहमत है कि नेकी करोगे तो ज्यादा और बुराई करोगे तो भी मिथलीहा, उसी की मानिंद उतनी ही। एक तो इसका मतलब है उतनी ही, यानी एक बुराई का एक ही बुराई लिखी जाएगी और एक ही उसकी यानी उसका गुनाह बनेगा, उसको 10 नहीं किया जाएगा, 70 नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसका माना है भी मिथलिहा का कि उसी की मिसल, जैसी बुराई है ना उसी तरह की आप देखें सजाओं में भी मुमासलत है। मसलन है यतीम का माल खाने वाला, वो अपने पेट में अंगारे भर रहा है तो खा रहा है यतीम का माल, अपने पेट में अंगारे भरता है। इस तरह ही और भी कई आप बुराइयों का देख लें, आपको उनमें यही पता चलेगा कि उसके अंदर मुमासलत मिलती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ऐसी होती है कि आपको लगता है अच्छा ये इस बुराई का ये सजा है इसकी। तो अल्लाह ताला ने कितना इंसानों पर रहम फरमाया है, कितना इंसानों के ऊपर शफकत की है कि उनको बुराइयों के बदले ज्यादा नहीं किए, वरना अगर ऐसा होता तो हम किधर जाते। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आप देखें खुदकुशी करने वाला, तो खुदकुशी करने वाला अपने आप को जहन्नुम के अंदर उसी चीज से जिससे उसने खुदकुशी की थी उसी के साथ अपने आप को मारता रहेगा। तो ये जैसे उसने गुनाह किया उसी की मिसल सजा है ना, और इक्विलेंट तो मैंने आपको बताया ही। वतरहकुहुम जिल्ला, और उनके चेहरों पर जिल्लत छा रही होगी। पिछले वालों का क्या बताया कि उनके चेहरों पर जिल्लत नहीं होगी, और इनका क्या बताया इनके चेहरों पे जिल्लत छा रही होगी। मा लहुम मिन अल्लाहि मिन आसिम, उनके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। कोई अल्लाह से कौन बचा सकता है, अल्लाह ताला से कौन छुड़ा के और उनको वहां से निकाल सकता है जिस मुसीबत में वो पड़े होंगे, जिस अजाब में होंगे। نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ کوئی کانٹیکٹ نہ جن کی خاطر بھی برائیاں کی تھیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی برائی کرنے کا کہے, اللہ کی نافرمانی کا حکم دے, اس دنیا کے اندر کوئی بھی رشتہ ہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارا ہے, تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم مجھے بچا لو گے اللہ کے عذاب سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے ماں لہم من اللہ من عاصم, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اس دن, کوئی بچانے والا ہوگا ہی نہیں, نظر ہی نہیں آنا کسی نے, اس وقت تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو پھر ہم کسی کی خاطر کیوں اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو بھریں, کیوں ہم اپنے آپ کو پکڑوائیں ان کی خاطر, ان کی محبتوں میں یا ان کے روب کی وجہ سے, یا ہم ان کو نہ نہیں کہہ سکتے یا پھر وہ کیا کہیں گے. اصل میں یہی مسئلے ہیں نا جس کی وجہ سے پھر کہ ہمیں یہ بہت پریشانی ہوتی کہ ہم ان کو کیسے فیس کریں گے, اس کی وجہ سے ہم وہ گناہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی بچانے والا ہوگا تو کیا کریں گے. اور پتہ ہے کسی اسکالر سے سوال کیا گیا کہ آج باطل اتنا کیوں پھیل رہا ہے, کیوں اتنا پھیل رہا ہے, کیوں اتنے ہی جڑ پکڑ رہا ہے, تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا اس لیے کہ جو حق والے ہیں نا وہ حق بولنے سے اب گھبرانے لگے ہیں, وہ حق بات نہیں کہتے, ان کو یہ ہوتا ہے یہ ہمیں کیا کہے گا, یہ ہمیں پھر کیا سمجھے گا, پتہ نہیں جو بھی ذہن میں خیال آتے ہیں, یا میں اس کے آگے اچھا بن جاؤں. تو انہوں نے حق کہنا چھوڑ دیا, اس لیے باطل فلرش کر رہا ہے, اس لیے پنپ رہا ہے. اب یہ شکایت پھر ہم نہ کریں کہ کیوں اتنا زیادہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اہل حق نے اپنی زبانیں بند کر لیں, وہ بولتے ہی نہیں اب. تو جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی نا میرا وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, یہ بچائے گا مجھے, یہ میری قبر میں جائے گا, یہ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہوگا, تو تب آپ کو خود یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں اس کی ماننی, یہ کتنا ہی پیارا رشتہ کیوں نہ ہو. اور آپ دیکھنا یہ بات کو غور کرنا کبھی کہ اس دنیا میں بھی کئی رشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آخرت میں تو کسی نے کیا ہمارے لیے کھڑے ہونا, اسی دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو ان کی حقیقت, اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ایسی جن کے پیچھے آج ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں نا, وہ دنیا میں بھی ہمارے نہیں بنتے. کئی لوگ عورتیں کہتی ہیں ہسبینڈ کی خاطر میں نے حجاب چھوڑ دیا اس طرح, اور اس کے بعد پھر وہ روتی بھی آتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ اب گھوم رہا ہے, کسی اور کے ساتھ اس کے افیئرس چل رہے ہیں. ایک نے مجھے کہا کہ میں نے اس کی خاطر میں نے حجاب اتارا, میں نے اس لیے کرا کہ میں اچھی لگوں اس کی نظر. میں نے کہا جب آپ نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا اس کو راضی کرنے کے لیے, تو کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ آپ سے راضی ہو جاتا, جس اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں اسی کو آپ نے ناراض کر دی تو یہ کیسے راضی ہوتا آپ سے. اسی طرح کی اور بے شمار مثالیں, بے شمار ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کی خاطر کریں گے نا تو ہم ان کے لیے اچھے ہو جائیں گے, ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے, ہم ان کے پیارے بن جائیں گے, یہ ہمیں پوچھے گا. لیکن وہی اللہ دکھاتا ہے اسی دنیا کے اندر کہ وہی پلٹ کے ایسا تھپڑ مارتے ہیں کہ انسان پھر سنبھل بھی نہیں سکتا, اور پھر وہ روتا پھرتا ہے کہ اس کی خاطر میں نے یہ کیا, اس کی خاطر میں نے یہ چھوڑا, اس کی خاطر میں نے اللہ کو ناراض کیا, اور یہ دیکھو اب میرے ساتھ. یہ مثالیں بھری پڑی ہیں. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا, وہ ایسے ہو جاتے ہیں ان کے چہرے کے گویا ڈھانپ دیے گئے ان کے اوپر سیاہ رات کے ٹکڑے. آپ نے دیکھا رات جو چھاتی ہے نا بالکل اندھیری ہوتی ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ کالی رات کی چادر ہے, ایک چادر ہے جو اس کے اوپر تنی بھی ہے. تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اس چادر کا ایک ٹکڑا لا کے ان کے چہرے پہ ڈال دیا گیا, اتنی سیاہی ہوگی جیسے ڈھانپ دیا ان کے چہروں کو تاریک رات نے. کتنی اندھیری ہوتی ہے رات, اگر اس میں چاند نہ ہو یا کوئی روشنی نہ ہو تو کتنی اندھیری ہوتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس اندھیری رات کا ایک ٹکڑا لا کے ان کے منہ پہ رکھ دیا, جس نے ان کے چہروں کو کور کر لیا. وہ کس وجہ سے ہوگا اس طرح, وہ ان کی جو ان کو جو فیلنگ ہوگی نا ذلت کی, और उनको फेलियर की जो फीलिंग होगी और जो उनको अल्लाह की नाराज करके जो आगे वो अंजाम देख रहे होंगे, वो सारी चीजें उनके चेहरे पे देखे ना, चेहरा डिपिक्ट करता है इंसान के इमोशंस को। आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा बताता है आप खुश हैं, आप उदास होते हैं आपका चेहरा बताता है आप उदास हैं, आप गमगीन है तो चेहरे बताते हैं कि गम है। इनके चेहरे बोल रहे होंगे उस दिन, यानी चेहरों से पता चल रहा होगा कि कितना रिग्रेट है इनके अंदर, कितनी परेशानी है इनको, कितना गम है इनके अंदर, कितनी जिल्लत का एहसास है। कि आप 4 लोगों के सामने कोई किसी को जलील करते हैं, उसके चेहरे का रंग डिफरेंट हो जाता है, उसको अपनी जिल्लत महसूस होती है ना, ये पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं, और फिर फेलियर का एहसास कि ये मैंने क्या कर दिया। वो जो एकदम इंसान के चेहरे के ऊपर आता है ना, वो इनके यहां पे इसका बताया जा रहा है। और कितनी मायूसी होगी, और जो बेइज्जती का एहसास है ना कि मैं बेइज्जत हो रहा हूं सबके सामने, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ये सारी जिंदगी का कच्चा छटा सामने लाया जाएगा, तो वो जो एहसास होगा वो कैसा होगा कि उनके चेहरे काले स्याह हो गए। अल्लाह अकबर। उलाइका असहाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, ये हैं आग वाले जिसमें हमेशा रहने वाले हैं। आप देखें, आप दुनिया की जिंदगी दिखाई गई, फिर आपको एक दारुसलाम दिखाया गया जहां पे कभी कोई गम है ही नहीं, कोई रंज है ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं, नो पेन। और उसके बाद आपको एक ऐसी जगह दिखाई गई कि अगर तुम इसी में, इसी को संवारने में, इसी मताउल हयात दुनिया के पीछे पड़े रहे और इसी में घूमे रहे और इसी के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, तो फिर देखो ये है एक और अंजाम। और चेहरों की बात बहुत आई, किसी का चेहरा सियाह नहीं है, रोशन है। वो जू हुई योम इदिन, है ना, उस दिन उनके चेहरे रोशन होंगे। और किसी जगह पे ऐसी है कि कालाहट से उनके चेहरे स्याह पड़े हुए। अल्लाह अकबर। तो एक हदीस में आता है ना कि हर दिन, ये इब्ने कसीर में आपको मिल जाएगी, कि हर दिन सूरज के तुलू होने के वक्त उसके दोनों तरफ दो फरिश्ते होते हैं जो बुलंद आवाज से पुकारते हैं, और इस पुकार को इंसानों और जिन्नों के सिवा सब सुनते हैं। और वो इतनी ऊंची क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो एक अनाउंसमेंट पता है सुबह सुबह हो रही है, अनाउंसमेंट सुबह सुबह हो रही है, जिसको हमारे कान नहीं सुनते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि ऐसी अनाउंसमेंट होती है, सब सुन रहे हैं, लेकिन जिन और इंस नहीं सुनते। और वो क्या अनाउंसमेंट है, लोगों अपने रब की तरफ आओ, जो कम हो या काफी हो वो बेहतर है उससे जो ज्यादा हो और गाफिल करते हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने अभी हातिम में इब्ने जरीर ने भी ये रिवायत किया। तो यानी जो कम है और आपको किफायत करता है ना, उससे आपके सारे घर चल रहा है, कम है बेशक लेकिन गुजारा हो रहा है, जिसको हम कहते हैं गुजारा हो रहा है, वो बेहतर है उससे जो ज्यादा हो और इंसान को गाफिल ही कर दे। फिर उसके बाद टाइम ही ना हो, ना कुछ सीखने का कुरान को, ना कोई दीन की बात सुनने का, ना कोई नमाज पढ़ने का, ना कोई नेकियां करने का, ना किसी के गम और परेशानी के अंदर उसके काम आने का, ना किसी वालदेन की खिदमत करने का, ना कुछ भी वक्त ही नहीं, वो गाफिल कर दे उसको। ज्यादा की जो चाहत है वो ज्यादा के पीछे जाता है और वो उसको गाफिल कर दे, उससे बेहतर ये काम है जो किफायत कर जाए। लेकिन किसी को क्या परवाह, सुबह तो होती है तो सब भागते हैं कि और की तलाश। ये नहीं कि आप कमाएं ना, कमाई करना तो वो भी एक रिस्क, हलाल कमाना भी एक इबादत है, लेकिन अगर इंसान इस दौड़ में लग जाए ना कि ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा, गुजारा चल भी रहा है लेकिन उसने ज्यादा की उसको तलाश है, तो वो फिर गफलत में ही डालती है। जाहिर है इंसान के पास वही 24 आवर है, वो ज्यादा की दौड़ में लग गया तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, 24 घंटे भी वो लगा रहेगा तो तब भी उसकी लालच खत्म नहीं होता। वयौमा नहशुरुहुम जमीअन, اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے جمیان سب کے سب کو، یعنی کوئی بھی پیچھے نہیں رہ جائے گا، ہر ایک وہاں پہ موجود ہوگا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس میں سورہ کہف میں، وعورد علی ربک صفا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے سب. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، اور ایک میں ہے فرادا کا لفظ بھی ایک میں آتا ہے آیت میں، کہ ہم دیکھو تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تم نے تو سمجھ لیا ہوتا کہ کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں ہے، تم نے سمجھ لیا ہوتا کچھ نہیں ہونا، تم نے سمجھ لیا ہوتا ایسے ہی زندگی گزرتی رہنی ہے، لیکن دیکھو ہم لے آئے نا تمہیں. تو اس دن سب فرما برداروں کی طرح صف باندھے کھڑے ہو جائیں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کیا مکانکم انتم وشرکاکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرو تم بھی اور تمہارے شریک بھی. شریک کون؟ جن کو بھی انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنایا ہوا تھا، اللہ کی ذات میں کسی نے شرک کیا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا، الوہیت میں شرک کیا، اس کی عبادت میں شرک کیا، تو وہ سب جو مشرک ہیں ان کو بھی، اور جو انہوں نے جن کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، وہ معبود نہیں تھے، وہ جو جعلی معبود تھے، ان کو بھی کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ. فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تو ہم تفریق ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک اس دن کیا کہیں گے، تم ہماری تو نہیں پوجا کرتے تھے، تمہاری تو نہیں عبادت کرتے تھے. صرف بعض تو شریک ایسے ہیں کہ جنہوں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا، وہ خود نیک لوگ تھے اور انہوں نے بعد میں ان کو ان کی بت بنا لیے یا ان کو پوجنا شروع کر دیا کسی بھی صورت میں، تو اب وہ بھی کھڑے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی کہہ دیا جائے گا آپ بھی یہاں پہ ٹھہریں اور آپ بھی ٹھہریں، دونوں میں پھر جدائی کرا دی جائے گی. وامتاز الیوم ایوہ المجرمون ہے نا سورہ یاسین میں، تو پھر جدائی کرا دی جائے گی، الگ الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے شریک آپ کہہ رہے ہیں ان کو جو ان کی پوجا کرتے تھے، تم تو ہماری تو نہیں پوجا کرتے تھے، یعنی وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے ان کو پکار رہے ہیں، ان کو کوئی اس چیز کا انفارمیشن ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا، آپ کسی کو سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ آپ نے کہا کہ بھائی کسی کو انتظام کیا ہوا ہے، کوئی ہمارا سامان گزروا دے گا یا کوئی ہمیں نکال لے گا یہاں پہ، اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بھائی وہاں پہ وہ آ جائیں گے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں کوئی بھی نہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ نہیں لے جا سکتے، اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کس نے مجھے یہاں پہ آ کے میرا سارا معاملہ صحیح کرانا تھا، وہ کہاں ہے، وہ ہو ہی نہ وہاں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ تو پوری آئندہ رہنے والی زندگی انفینٹ لائف کا مسئلہ ہے، کہ وہ جن کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا، جن کے اوپر ڈپینڈ کر رہے تھے کہ یہ یہاں پہ بچائیں گے، وہی وہاں پہ مکر جائیں گے. اللہ اکبر. ارے شیطان دیکھیں کیسے انسان کو رسوا کرتا ہے نا، اور کیسے اس کو وہ چکمہ دیتا ہے. میں حیران ہوں، کوئی تھا بندہ، جو لڑکا تھا جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ بھئی تم شیطان کی پوجا کرے، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے ایک اللہ کے پاس نہیں پہنچنا، تو کیا کرو گے وہاں پہ جا کے، کیا جواب دو گے؟ تو کہنے لگا وہ وہاں پہ وہ شیطان بھی جہنم کے اندر ہوگا، تو ہم بھی جہنم میں ہوں گے، اور وہاں پہ شیطان ہی انچارج ہوگا، تو پھر ہمیں کیا مشکل ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یعنی انہوں نے سمجھ لیا وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون انچارج ہے وہاں پہ، تو شیطان نے کتنا ان کو دھوکہ دیا ہوا کہ یہی تمہیں وہاں پہ کارساز ہیں، یہی تمہیں گزروا دیں گے، یہی تمہیں بچا لیں گے، یہی تمہارے، اور وہ تو اسی کی پوجا کرتا تھا، تو اس کو شیطان نے کہہ دیا تم فکر نہ کرو، میں بھی جہنم میں ہوں گا، تو ان چار تو وہاں پہ، تو جہنم ساری میری قبضے میں. تو یہ دھوکے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کوئی اور مجھے وہاں پہ بچا لے گا. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور وہ اب آگے سے کہتے ہیں، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے نا، وہ کہیں گے تم تو نہیں ہماری عبادت کرتے تھے. اب اگر پتھر کے بتوں کی بھی کسی نے کی ہے نا عبادت، تو پتھر کے بت نہیں وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے इतने तो वो भी पागल नहीं है कि वो पत्थर के बुतों को पूजना शुरू करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इन बुतों के पीछे कोई नेक हस्तियां हैं, चाहे वो राम सीता पता नहीं क्या जो भी देवी देव, वो कहते हैं इसके पीछे भी चाहे कोई फरिश्ता है चाहे कोई इंसान है, कुछ कोई कॉन्सेप्ट जरूर उसके पीछे होता है, सिर्फ पत्थर बना के नहीं पूज रहे होते। तो अब वो जिनकी भी पूजा कर रहे थे वो भी उस दिन खड़े होंगे और ये भी वो कहेंगे हमें क्या पता हमारे लिए, तो अगर वो उन्होंने ना इनको कहा और वो खुद भी सही अकीदे पे थे तो वो कहेंगे हमारे लिए अल्लाह ही काफी है जो गवाह है हमारे और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह को पता है कि हमने तुम्हें कभी नहीं कहा। इन कुन्ना अन इबादती कुम लगाफिलीन, और थे हम तुम्हारी इबादत से अलबत्ता गाफिल, और इससे क्या बड़ी बात हो सकती है, ये समझते हैं कि हम बुतों के सामने खड़े होके या कब्रों के सामने खड़े होके तो इनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं बेचारों को, वो तो जानते भी नहीं। तो वो उस दिन कहेंगे बदबख्तो तुम हमारी इबादत कब करते थे, हमें तो पता भी नहीं कि तुम हमारे पीछे आ रहे हो या तुम हमें पुकार रहे हो, यानी बिल्कुल अपने आप को लाताल्लुक कर देंगे। अब देखें इनकी रुसवाई का अंदाजा आप करें कि ये सोच रहे हैं कि हमें बचाएंगे, वो तो इसके भी इनकार कर दिया कि तुमने कभी हमारी इबादत की, और ये कहते हैं आप उसमें से बहिश्ती दरवाजे में से गुजर जाएंगे ना तो फिर वो आपको वहां पे जन्नत में ही दाखिल आप हो जाएंगे, ये बहिश्ती दरवाजा है। वहां पे लोगों का इतना हजूम होता है कि जब वो खुलता है ना इतनी धक्कम पेल होती है, और बाकायदा उसको खबरों में दिखाते हैं कि देखिए बहिश्ती दरवाजा खुल गया अब इसमें से लोग जा रहे हैं।